नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल में हाल के राजनीतिक हालातों को देखते हुए सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर ने राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रगति दर्ज की। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। और धराली आपदा के 35 दिन बाद गंगोत्री धाम में एक बार फिर से तीर्थयात्रियों की आवाजाही शुरू। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल में हाल के राजनीतिक हालातों को देखते हुए राज्य के सीमांत जिलों चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर के प्रशासन, पुलिस और सशस्त्र सीमा बल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नेपाल से लगी सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए और असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाए। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर भी सतत नजर रखने और समय पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि वे केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और सीमा सुरक्षा बल के साथ समन्वय बनाए रखें और ग्रामीणों व स्थानीय समितियों की भागीदारी से निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करें। सीमावर्ती मार्गों की नियमित निगरानी और सीमा पार आवागमन पर सतर्कता बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने को कहा। बैठक में सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा चुनौतियों और खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में उत्तराखंड ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर ने राष्ट्रीय रैंकिंग में बड़ी प्रगति दर्ज की है। एक रिपोर्ट।
देहरादून ने पिछले वर्ष की तुलना में 37वें स्थान से छलांग लगाकर 2025 में 19वां स्थान हासिल किया है। ऋषिकेश 31वें से बढ़कर 14वें स्थान पर पहुंचा, जबकि काशीपुर ने 19वें स्थान से सुधार कर 18वां स्थान प्राप्त किया। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष रमेश कुमार सुधांशु ने इस उपलब्धि का श्रेय शहरी निकायों, उद्योगों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों को दिया। इसमें यांत्रिक सड़क सफाई, ठोस अपशिष्ट व निर्माण मलबा प्रबंधन, हरित पट्टी विकास, उद्योग में स्वच्छ ईंधन का उपयोग, स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन और जन जागरूकता को अहम बताया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये उपलब्धि सभी के लिए स्वच्छ वायु के लक्ष्य के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से पंकज सनवाल, खुलबे।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने उत्तराखंड में वन पर्यटन और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अभिनव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चयनित स्थलों के वन विश्राम गृहों को इको और नेचर कैंप के रूप में विकसित करने पर जोर दिया है। मुख्य सचिव ने कहा कि नंदा देवी शिखर को पर्वतारोहण अभियानों के लिए खोले जाने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने राज्य की पर्वतारोहण नीति की समीक्षा कर नई नीति बनाने और ट्रैकिंग के नियमों को शीघ्र लागू करने को कहा। पर्वतारोहण व ट्रैकिंग की अनुमति के लिए एकल खिड़की व्यवस्था 15 नवंबर तक शुरू करने के निर्देश दिए गए। सचिवालय में उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने 25 नई इको टूरिज्म योजनाओं पर तेजी से काम करने को कहा। उन्होंने बताया कि इन स्थलों को जबरखेत मॉडल की तर्ज पर विकसित कर पर्यटकों को आकर्षक सुविधाएं दी जाएं, ताकि वे लंबे समय तक यहां ठहर सके। मुख्य सचिव ने ऋषिकेश स्थित 84 कुटिया के पुनर्विकास की योजना पर भी काम तेज करने के निर्देश दिए। इस आश्रम से जुड़े दस्तावेज और संदर्भ ऋषिकेश व कोलकाता से एकत्र कर प्रदर्शित किए जाएंगे। केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय टीम गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आपदा प्रभावित जिलों का दौरा कर रही है। टीम ने कल पौड़ी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिलों का भ्रमण किया और प्रभावितों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी। टीम ने भरोसा दिलाया कि केंद्र से पूरी मदद मिलेगी। दल ने बागेश्वर में हड़बाड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां भूस्खलन से 7 परिवार प्रभावित हुए हैं और उन्हें अस्थायी स्थानों पर रखा गया है। टीम ने सड़क और बिजली स्टेशन को हुए नुकसान का भी जायजा लिया। नैनीताल जिले की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि मानसून में जिले को लगभग 443 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें लोक निर्माण, सिंचाई, ऊर्जा, ग्रामीण निर्माण, पेयजल और शिक्षा विभागों को सबसे ज्यादा क्षति हुई है। टीम ने गोलापार, गोलापुल, सूखी नदी और चोर गलिया समेत कई क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। टीम में कृषि मंत्रालय के निदेशक वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय जल आयोग के अधीक्षण अभियंता सुधीर कुमार और यूएलएमएमसी के निदेशक शांतनु सरकार शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान जिलों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी और महाराष्ट्र के गवर्नर श्री राधाकृष्णन ने आईएनडीआई गठबंधन के प्रत्याशी और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से हराया। उपराष्ट्रपति चुनाव की मतगणना के बाद राज्यसभा के महासचिव और रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मोदी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुल 781 मतदाता सांसदों में से 767 सांसदों ने मतदान किया। श्री मोदी ने बताया कि 767 मतों में से 752 वैध पाए गए और 15 मत अमान्य घोषित किए गए। उन्होंने बताया कि नए संसद भवन में हुए मतदान में 752 वैध मतों में से श्री राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। उत्तरकाशी में धराली आपदा और अतिवृष्टि के 35 दिन बाद गंगोत्री धाम में एक बार फिर से तीर्थयात्रियों की आवाजाही शुरू हो गई है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्सों को प्रशासन और बीआरओ की लगातार कोशिशों से खोल दिया गया है। फिलहाल यात्रा संचालन शटल सेवा से किया जा रहा है। कल शाम तक धाम में 100 से अधिक यात्रियों ने विशेष पूजा अर्चना कर मां गंगा के दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से दीपावली तक अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी में व्यापक सुधारों की घोषणा की थी। अब सरकार ने सेवा क्षेत्र में इन सुधारों को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आइए जानते हैं इन बदलावों का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक रिपोर्ट।
सरकार ने सेवा और पर्यटन क्षेत्र में आम लोगों को राहत देते हुए जीएसटी दरों में अहम कटौती की है। ये सुधार 22 सितंबर से प्रभावी होंगे। अब जिम, सैलून, नाई और योग सेवाओं पर 18% की जगह केवल 5% जीएसटी लगेगा। इससे ये सेवाएं अधिक सस्ती और सुलभ बनेंगी। इसका उद्देश्य लोगों को नियमित रूप से स्वास्थ्य, फिटनेस और योगाभ्यास जैसी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि टैक्स में कटौती से युवाओं में स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर उत्साह बढ़ेगा।
जिम, सैलून, योगा जैसी सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है, यानी हमारा नौजवान फिट भी होगा और हिट भी होगा। सरकार आपकी फिटनेस के लिए इतना कुछ कर रही है।
होटल उद्योग के लिए भी सरकार ने राहत का ऐलान किया है। अब 7,500 रुपए प्रतिदिन तक के होटल ठहराव पर जीएसटी दर 12% से घटाकर केवल 5 कर दी गई है। इससे यात्रियों को किफायती और बेहतर विकल्प मिल सकेंगे। इन जीएसटी सुधारों के माध्यम से सरकार न केवल नागरिकों को राहत देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, बल्कि सेवा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी नव चेतना का संचार कर रही है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से पंकज सनवाल खुलबे।
और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। सीपी राधाकृष्णन के भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने खबर का शीर्षक लिखा है, सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। श्री राधाकृष्णन ने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से पराजित किया। पड़ोसी देश नेपाल में बने राजनीतिक हालातों पर दैनिक जागरण की खबर है, नेपाल सीमा पर 3 दिन हाई अलर्ट। इसी पर हिंदुस्तान समाचार पत्र का शीर्षक है, नेपाल में नौजवानों ने किया तख्तापलट, संसद जलाई। हालात बिगड़ने के बाद काठमांडू के हवाई अड्डे से सभी उड़ानें स्थगित की गई। भारत नेपाल सीमा को किया सील, भारतीयों को नेपाल नहीं जाने की सलाह। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल में हाल के राजनीतिक हालातों को देखते हुए सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर ने राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रगति दर्ज की। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे और धराली आपदा के 35 दिन बाद गंगोत्री धाम में एक बार फिर से तीर्थयात्रियों की आवाजाही शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वान्ह 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।